तो गज़वाए अहज़ाब जो है इसका निचोड़ क्या था, और जो गज़वाए अहज़ाब हुई इसको अगर हम जो है वो इसका मुख्तसिर जैसे खाका तैयार करना चाहें तो आप कैसे तैयार करेंगी? पहली बात ये कि गज़वाए अहज़ाब जो है इसका नाम क्या है और ये नाम क्यों है? अहज़ाब भी है और खंदक भी है। दूसरी बात ये कि गज़वाए अहज़ाब होने का असल मुहर्रिक क्या था, क्यों हुई? फिर तीसरी बात यह कि इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल थे, कौन कौन से कबाइल शामिल थे कुफार की तरफ से, और मुसलमानों की तरफ से जो थे वो कौन लोग शामिल थे। फिर आपने जो है वो खंदक जब खोदी तो खंदक जो है वो कैसे खोदी गई, क्या तरीकेकार था, या फिर ये कि खुद से ही जो है वो खोदी या फिर जो है वो सहाबा की मुशावरत से? क्योंकि आपने गजवात के मौके पर या आम जिंदगी में जितने भी अहम मौके हैं हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा ये मिलता है कि आप मशवरा किया करते थे, है ना, मुशावरत से आपने ये फैसला किया। और फिर इसी तरह आप ये भी देखें कि इस मौके पर मुसलमानों की मुश्किलात क्या थी, मुसलमानों की मुश्किलात जिसमें खुराक की कमी का जिक्र हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उस वक्त खुराक की किल्लत का ये हाल था कि थोड़े से जौ जो है बदबूदार चर्बी में मिलाकर पकाते, लोग भूखे होते वो उसे भी खा जाते, हालांकि वो बदमजा चर्बी हलक पकड़ लेती और इससे खराब बू आती थी। ये बुखारी की रवायत है बहरहाल। और इसी तरह ये बात के जो काम आपके सहाबा ना कर सके आपने किया, मसलन अकेले चट्टान का तोड़ना, फिर ये के खंदक की खुदाई के दौरान आप हमें खंदक खोदते हुए मट्टी ढोते हुए जो है वो नजर आते हैं, तो अमीर जो जिम्मेदार है उसका किरदार हमें क्या नजर आता है कि वो हर चीज में अपने सहाबा के और अपने जो मताहत लोग हैं उनके साथ साथ है, और अगर लोग एक पत्थर बांधे हैं तो वो दो पत्थर बांधे हुए हैं। तो अमीर ऐसा नहीं है कि खुद महल के अंदर है और अवाम जो है वो सड़कों पर जो है वो रुल रहे हैं या अवाम जो है वो काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह जब आप मेहनत मुशक्कत करते हैं और अल्लाह ताला से ताल्लुक और रुजू रखते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है वो मदद भी करता है, और उसमें फिर क्या है कि फरिश्तों की मदद की शक्ल में फरिश्तों का आना, आंधी का चलना, और सहाबा के अंदर जो है वो बेहतरीन ईमान का होना। तो इसके आप मुख्तलिफ वाकयात जो है वो अपने जहन में रख सकती हैं, और जाबिर बिन अब्दुल्ला के यहाँ जो दावत वाली बात थी आप वो याद रख सकती हैं। फिर इसी तरह हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु वाली हदीस जो मैंने आपको सुनाई थी, कौन से सहाबी थे जो गए थे? हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु। अच्छा, एक और रवायत भी मुझे मिलती है हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु की, ये बुखारी की है। वो कहते हैं कि जब सख्त ठंडी हवा की आंधी का जब मौका था ना तो वो क्या बताते हैं कि कुफार के लश्कर में चूंकि बदहवासी फैल गई थी तो इन हालात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके पूछा कि कौन है जो जाकर दुश्मन की खबर लाए, मगर इतनी ठंडी आंधी में किसी की हिम्मत ना पड़ती थी। आखिर सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह उन्होंने अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही सवाल किया तो भी सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हों ही ने कहा मैं जाता हूं। आपने 6 बार यही सवाल किया तो फिर सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हों ने अपने आप को पेश किया, चुनाचे आप रजी अल्लाह अन्हों लश्करे कुफार की तरफ रवाना हो गए। आप रजी अल्लाह अन्हों यानी जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हों खुद कहते हैं कि उस वक्त मुझे कतन कुछ सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। आपने वापस आकर वही हालात बयान किए जो लोग सुन रहे थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर पैगंबर का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर रजी अल्लाह अन्हु है। तो हो सकता है कि जो है वो एक सहाबी जो है वो पहले आपने भेज दिए हों फिर दूसरे उठ गए हों, है ना, तो इस तरह इन दोनों वाकयात में तत्वीक की जा सकती है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है इस मौके पर कि आप जो है ना एक तरफ लीडर का किरदार अलग करती चली जाएं, मुसलमानों के लीडर का किरदार क्या था, काफों के लीडर का किरदार क्या था, और दूसरी तरफ आप जो है वो मुसलमानों के अंदर जो दो ग्रोह थे एक मोमिनीन का किरदार क्या था एक मुनाफिकीन का किरदार क्या था, इसको भी आप अलग करती चली जाएं। और उसके साथ साथ जो है अब हम ये देखते हैं कि मतलब मुनाफिकीन का जब आप किरदार अपने सामने रखे ना, तो ये देखें कि उनके बहाने क्या क्या थे। बकायदा आपके पास दलील होनी चाहिए कि ये बहाने थे, ये उजर थे, और फिर साथ ही उसका अपनी अमली जिंदगी पर मैं और आप जो है वो इंतबाक भी कर सकते हैं। क्योंकि मुनाफिक के किरदार में आप देखें तो उनके अंदर बुजदिली पाई जाती है, वो मौत से डरता है, मुनाफिक कुर्बानी करना नहीं चाहता। मुनाफिक आप देखें मक्की जिंदगी में, रसूल अल्लाह की मक्की जिंदगी में हमें मुनाफिक नहीं नजर आते, है ना, कोई एक भी नाम नहीं है, शायद कोई एक आध अगर हो तो, लेकिन जितने भी मुनाफिक पैदा हुए वो मदनी दौर में पैदा हुए, क्योंकि मक्की दौर मुश्किलात का दौर था। तो मुश्किलात की भट्टी जो है ना वो फौरन खरा और खोटा जो है ना उसको अलग कर देती है। जब भी किसी पे आजमाइश मुश्किल तकलीफ आती है, फौरन पता चल जाता है अपना कौन है और बेगाना कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो मक्की दौर आजमाइशों की भट्टी का दौर था, सख्त तरीन दौर था, वहां मुनाफिक नहीं मिलते। तो मदनी दौर में मुनाफिक जो है उनकी पूरी एक जमात जो है वो मिलती है, और जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई उनका जो है वो सरदार है। अच्छा, इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो किस तरह से अपने सहाबा का हौसला भी बढ़ाते हैं, और किस तरह से जो है वो आप बिदार मग़्ज़ रखते हैं, कितने आप हिकमत वाले हैं और कितने आप तदब्बुर वाले हैं। मुझे ये बात ही बहुत अच्छी लगी कि आप रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे, उनको तो जैसे किसी चीज की भी इतनी परवाह नहीं थी। अब आप देखें कि अपने सहाबा के लिए वो चाहते हैं कि मदीना की जो पैदावार है उसका 1/3 जो है वो दे दें कबीला बनू गुतफान को या दूसरे लोगों को, ताकि कितनी बेहतरीन सियासी तदबीर उन्होंने उस वक्त जो है वो करने की कोशिश की है। तो कितना ज्यादा उनको जो है वो मौके की मुनासबत से फैसले करना, उसका उनको जो है वो अल्लाह ताला ने उनको ये चीज जो थी नवाजी थी, और उनको उसकी जो थी वो समझ थी मौके की मुनासबत से। तो इससे ये बात ही पता चलती है कि अवाम के लिए जो है वो फिर लीडर रहनुमा जो है वो सब कुछ करने की कोशिश करता है कि जिससे अवाम का जो है वो नुकसान ना हो। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाते हैं सूरत अहज़ाब आयत नंबर 21 में, लक़द कैना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कैना लकुम, तहकीक तुम्हारे लिए है। अब आप देखें काना जो है ये था के मानी देता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो है के मानी है। तो इससे मुराद क्या है कि तहकीक है तुम्हारे लिए, यकीनन है तुम्हारे लिए, और कुम की जमीर जो है ये मुसलमानों के लिए है, उस जमाने के जो मक्की दौर के मुसलमान थे, मदीना के दौर के जो मुसलमान थे, यानी मक्का से हिजरत करके आए थे जो मुहाजिर थे वो भी, और जो मदीना के अंदर थे, और फिर जो आपके बाद के अदवार के लोग हैं, यानी सहाबा के बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर रहती दुनिया तक, यानी आज के मुसलमानों के लिए भी और रहती दुनिया तक जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए क्या है, यकीनन है ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए फी रसूलिल्लाही, में अल्लाह के रसूल। अब देखें फी जो है अल्लाह के रसूल के अंदर, अल्लाह के रसूल में। अब अल्लाह का रसूल जो है वो क्या है, अल्लाह के रसूल की सीरत, आपका किरदार, आपकी मुआशरत, आपकी आइली जिंदगी, आपका इखलाक, आपका किरदार, आपकी मुआशरत, आपकी सियासत, आपका उठना और बैठना, आपका मिलना और जुलना, आपका लोगों से ताल्लुकात को जोड़ना और तोड़ना, आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, फी रसूलिल्लाह अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए है। अब आप देखें कि गोया के 40 साल की जिंदगी जब रिसालत की जिंदगी शुरू होती है, इससे ये बात भी पता चलती है कि अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए है। क्या है उस्वतुन हसनतुन, ये मुरक्कबे तौसीफी है, सिफ्त है। अब क्या है उस्वातुन, और उस्वा जो है अलिफ सीन या, किसी का इलाज करना, किसी को तसल्ली देना, किसी की मदद करना, तो और आसिया कहते हैं किसी को अपने बराबर समझना। मानी फिर इसके क्या है कि अगर तुम अपना इलाज करना चाहते हो, अपनी रूह का इलाज करना चाहते हो, अगर तुम अपने दिल की, अपनी रूह की, जो रूह तड़प रही है, जो रूह बुराइयों से अटी हुई है, जो जिस्म आज इंसान का जो जख्मी जख्मी है, उस जमाने में आप देखें कि इंसान, इंसानियत भटक रही थी, है ना, इंसानियत जख्मी जख्मी थी, अकदार पामाल हो चुकी थी, रिश्तों की तमीज मिट चुकी थी, अकायद जो थे वो मजबूत नहीं थे, लोगों के अकीदा जो था वो खत्म था, शिर्क आम आम था, बिद्दतें थी, बहुत बहुत कुछ। तो गोया के आप जो है दिल को तसल्ली देना चाहते हैं, अपने भटकती हुई रूह को एक सीधे रास्ते पे चलाना चाहते हैं, मदद करना, है ना, मदद करना चाहते हैं। तो फिर क्या करें कि अल्लाह के रसूल में उस्वा है। अब आप देखें कि फिर उस्वा क्या हुआ, इक्तदा, उस्वा कहते हैं फिर नमूने को, पैटर्न, वो चीज जिससे इला, ऐसा नमूना जिससे तसल्ली हासिल की जा सके, ऐसा पैटर्न जिससे भटकती हुई रूह जो है उसको हदायत मिल जाए, जिससे दिलों के जख्मों पर मरहम रखी जा सके, जिससे लोगों को जीने का ढंग आ जाए, मुस्कुराने का सलीका आ जाए, मरने और जीने के तौर तरीके आ जाए, इक्तदा नमूना उसे कहते हैं, उस्वा तो नमूना है। और यह बात भी आप याद रखें कि उस्वा का लफ्ज अच्छा नमूना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बुरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उस्वा गोया के कोई भी नमूना हो सकता है, कोई अपना उस्वा किसी डाकू को बना सकता है, या किसी लुटेरे को, या किसी राहजन को, या किसी जानी को, या किसी शराबी को, झूठे को, कोई अपना नमूना किसी भी बुरे इंसान को बना सकता है, तो वो उसका उस्वा है, हाँ, रोल मॉडल उसका है। और कोई अपना रोल मॉडल जो है वो किसको बनाएगा, जो कि मुसलमान है तो पैगंबरों को अपना रोल मॉडल बनाएगा, और मेरे और आपके रोल मॉडल कौन है, पैगंबर और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर खास। उस्वतुन हसनतुन, अब ये नहीं है कि इतना ही काफी था कि रसूल अल्लाह का किरदार आप देखें पीछे जो गुजरा है कितना खूबसूरत है। अब अल्लाह की खातिर अल्लाह ने रसूल बना दिया है, शुरू में हालात जम्मेलूनी के हैं, अल्लाह ताला प्यार से मुखातिब करते हैं, या युहल मुसम्मिल, या युहल मुदस्सिर, तुम कहां चादर लपेट कर रह गए, ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, तुम कहां चले गए, कौन सा अंजिर, उठो और डराओ। और फिर डराते डराते साल हा साल हो गए हैं, मक्की पूरा दौर आप लोगों पे खुशबू बखेरते रहे और लोग आप पर ओझड़ी डालते रहे, आप लोगों के लिए रहमत की दुआएं करते रहे और लोग आपको जादूगर, साहिर, काहिन, मजनू और दीवाना कहते रहे। आपके पास फरिश्ता मौजूद है कि दोनों बस्तियां ताइफ की और मक्का की, और खास तौर पर ताइफ की, अगर आप कहें, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ और फरिश्ते भी हैं जो मेरे साथ आए हैं, और अगर आप कहें तो इस बस्ती को जो है वो पहाड़ों के दरमियान जो है वो पीस कर रख दिया जाए, तो आप कहते हैं कि नहीं, हो सकता ये नहीं तो इनकी नस्लें ही ईमान ले आए। अब लोगों ने आपका खून बहाया, लोगों ने आप पर पत्थर फेंके, लोगों ने आपको शहर से बाहर निकाल दिया, और आप जो हैं वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि मुझे तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। किस चीज में नमूना है मेरे और आपके लिए, अल्लाह के रसूल में, अल्लाह के रसूल में। जब आपको रसूल बनाया गया, जब आप 40 साल के हो गए, जब आपको रिसालत मिली, पूरा मक्की दौर, मक्की दौर में आपका दावत का अंदाज, आपका दार अरकम में ठहरना, आपका मक्का की गलियों में जाना, आपका ताइफ का सफर करना, आपका मेला ओकाज में जाकर लोगों को कहना, और फिर हिजरत का सफर, और फिर मदनी दौर शुरू हो जाता है। फिर मदनी दौर में जाकर जो है वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए छोटी सी एक जगह जो सर ढांपने के लिए मिल गई है, तो आपकी सारी कोशिशें, एक तरफ आप यहूदी कबाइल से जो है मुआयदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी बात के जो है वो पक्के हैं, अपनी बात को पूरा करने वाले हैं, फिर तीसरी तरफ जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें कि जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां, उसमें क्या कर रहे हैं, एक तरफ आपने सहाबा के दरमियान मुआखात करवाई है ना, फिर आपने गैर जो मुस्लिम हैं उनके उनसे भी मुआयदा किया है, मिसाके मदीना के नाम से मशहूर है वो, फिर आपने क्या किया, मस्जिद नबी की तामीर की है कि कोई ऐसी جگہ مل سکے جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، نماز پڑھی جا سکے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، خود بھی مٹی ڈھو رہے ہیں، صحابہ بھی مٹی ڈھو رہے ہیں، خود تعمیر کر رہے ہیں وہ بھی تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر غزوہ بدر آپ دیکھ لیں، آپ کہیں الگ نہیں ہیں، آپ صحابہ کے ساتھ ساتھ ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے فوجوں کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، پھر غزوہ احد آپ دیکھ لیں، آپ کا دانت شہید ہوا ہے، آپ زخمی ہو چکے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے اب آپ کے سامنے اور بھی بہت سے سریے اور چھوٹے موٹے ایسے مارکے ہوئے ہیں، اب غزوہ احزاب جو ہے یہ 5 ہجری میں جو ہے وہ اس کا مارکا ہوتا ہے، اور میں اس بات پہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب کوئی آپ کو زندگی میں مشکل آتی ہے، یا مجھے مشکل آتی ہے، اور مشکلات کا طوفان ہی ٹوٹ پڑے، سخت مشکل ہے، ایک راستہ بھی بند ہے، دوسرا بھی بند ہے، تیسرا بھی بند ہے، ایسے میں ہم تو جھنجھلا جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہر طرف سے کفر آ کر آپ پر ٹوٹ پڑا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کتنا خوبصورت اسوہ ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئیں، یہ سورت احزاب کی آیت نمبر 21، یہ غزوہ احزاب میں آپ کا کردار جو ہے نا اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے. ایک تو ہے نا عام دنوں میں کسی کا کردار کیا ہوتا ہے، میں اور آپ عام زندگی میں تو مسکرا ہی لیتے ہیں، ہے نا، اور عام زندگی میں بھی کم مسکراتے ہیں، گھر کے اندر کم باہر زیادہ، گھر کے اندر پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں، باہر جو ہے نا بس ہیلو ہائے دس دیٹ اور مسکراہٹیں بعض اوقات ہم بکھیر دیتے ہیں، وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں جو باہر کی زندگی میں مسکراہٹیں دے دیں، بعض لوگ تو باہر بھی ہر وقت جو ہے وہ ایسے رہتے ہیں جیسے جو ہے وہ کسی نے ان کا قرض نہیں دیا ہوا، یا ان کو کوئی بہت ہی مشکل یا پریشانی میں، ہر وقت سپاٹ چہرہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا اور کسی کو نہیں دیکھا. میں سوچتی ہوں میرا دل بہت اس بات پہ افسردہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تو غموں کے پہاڑ چھپے ہوئے ہوتے تھے، غموں کے طوفان ہوتے تھے، پھر آپ سب سے زیادہ مسکراتے تھے، تو پھر ہم کیوں نہیں مسکراتے؟ میں اپنے آپ سے اکثر یہ سوال کرتی ہوں کہ میں کیوں نہیں پھر مسکراتی، کیوں جو ہے وہ دل کے اندر اگر غم کا طوفان بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تو چہرہ جو ہے وہ سپاٹ کیوں ہو جائے؟ اللہ کے نبی کے اسوے میں ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے نا، آپ کی تقلید ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین ہے. دوسری بات جو یعنی عام زندگی آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہاں پہ کیا کہا کہ جنگ کے دوران آپ کا کردار سب مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع نمونہ ہے، اسوۃن حسنۃن، ایسا نمونہ جو حسن، آپ دیکھ لیں کہ احسان کے درجے کا، حسین، بیسٹ، یہ نہیں کہا کہ گڈ ہے یا بیٹر ہے یا گڈ ہے، بلکہ کیا کہا، بیسٹ ہے، بہترین ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ جنگ کے موقع پر مشکل وقت میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے سپہ سالار پر ہوتی ہے، یا جو بھی کوئی لیڈر قائد رہنما ہے اس پہ ہوتی ہے. اب مسلمانوں کے سپہ سالار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس وقت حالات کیا تھے آپ ذرا ان کو نوٹ کریں. نمبر 1، دشمن کی کثرت، پورا کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو کر مدینہ کی چھوٹی سی ریاست پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑا ہے. اور نمبر 2، خوراک کی شدید قلت ہے، اور محاصرے کے حالات ہیں نا، خوراک کی شدید قلت ہے. حالات کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ ہمیں جو ہے وہ صحابیات کے جو ہے وہ اقوال ملتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت سے غزوات، غزوہ موریسیہ، موریسی، خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین، وہ اتنے کا نام لینے کے بعد کہتی ہیں کہ میں ان میں رسول اللہ کے ساتھ رہی ہوں، آپ پر کسی غزوہ میں ایسی شدت اور مشقت نہیں ہوئی جیسی غزوہ خندق میں پیش آئی. اس غزوے میں مسلمانوں کو زخم بھی بہت لگے، سردی کی شدت سے تکلیف بھی اٹھائی، اس کے ساتھ کھانے پینے کی ضروریات میں بھی تنگی تھی. پھر آپ دیکھ لیں کہ اس غزوہ احزاب میں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر خندق کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی. اگر کسی وقت آرام کے لیے لیٹے بھی تو ذرا کسی طرف سے شور و شغب کی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ باندھ کر میدان میں جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کئی کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام کرنے کے لیے تشریف لائے اور کوئی آواز سنی تو فوراً باہر تشریف لے گئے، پھر آرام کے لیے ذرا کمر لگائی اور پھر کوئی آواز سنی تو باہر تشریف لے گئے۔ آپ جو ہے وہ ذرا سا غور کریں کہ آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، رات کے وقت بچے کو دودھ دینا ہی، دودھ دینے والی ماں کو کتنا محال ہوتا ہے، بستر کے اندر ہی ماں ہوتی ہے بعض اوقات، ہے نا، فیڈر کا زمانہ تو اب آ گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو دودھ کی نہریں ہمارے سینے میں رکھی ہیں تو وہی مشقت لگتا ہے، بچے کی ماں صبح کہتی ہے کہ میں رات بھر سوئی نہیں۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بچہ یا شوہر ڈیوٹی سے رات کو واپس آئے تو طبیعت پر ہماری جو ہے طبع نازک پہ کتنا گراں گزرتا ہے، دروازہ کھولنا بھی مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں چابی لے جانا، اب پھر کیا ہے کہ کھانا دینا مشکل لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ روٹی پڑی ہوئی ہوگی کھا لینا، اب یہ بھی کیا بات ہوئی کہ میں جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ اٹھوں۔ بہرحال بہت سی خوش قسمت ایسے بھی ہیں جو اپنے شوہروں کا انتظار کرتی ہیں، اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہیں، ان کو کھانا دیتی ہیں، دونوں طرح کے کردار ہیں۔ بہرحال مجھے اور آپ کو اپنا ساتھ ساتھ جو ہے وہ جائزہ لینا ہے۔ پھر اب یہ تو بات ہے اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنے بچے، لیکن اسلام کی خاطر اگر مجھے اور آپ کو اٹھنا پڑے، اسلام کی خاطر، قرآن کی کلاس کی خاطر، آپ سبق پڑھ رہی ہیں، آپ پیپر چیک کر رہی ہیں، کیونکہ آج آپ یاد کر رہی ہیں، کل آپ کو، آج کا طالب علم کل کا استاد ہے، آج آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ آتی ہیں، سنتی ہیں، لکھتی ہیں، اور کل آپ کو یہ سبق زیادہ اچھی طرح یاد ہوگا، کیسے، جب آپ استاد بنیں گی، کیونکہ اب تو یہ ہے کہ کبھی لیٹ بھی ہوگی تو کہتے ہیں سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے، چلو چھٹی بھی کر لی تو ذرا ادھر ادھر آپ نظریں چرا لیتی ہیں، پیپر جو ہے صبح نہیں دیا چلو شام کو ہم دے دیں گے، خود ہی آپ اپنے طریقے سوچ لیتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، یا پھر یہ کہ چلو کل دے دیں گے، یا پھر یہ کہ اسلام مسئلہ جو ہو گیا تھا آخر ابھی تک باجی کو نہیں بتایا تو چلو وہ بتا دیں گے کہ یہ عذر بہانہ، یہ میرا حالات، آپ جائزہ لیتی ہیں کہ کون سی بات اب بتائی جا سکتی ہے، کون سا مسئلہ ایسا پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ بناتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اب میں کیا بات بتاؤں کہ بھی کیا تھا، خیر اچھا پھر کیا، لیکن جب آپ استاد بنیں گی نا تو میرے پیارے بچوں ایک بات یاد رکھنا، یہ کرسی بڑی مشکل ہے، یہ کرسی بڑی سخت ہے، یہ کرسی جو ہے جس پہ میں اس وقت بیٹھی ہوں یہ کرسی امانت ہے، یہ سخت آزمائش ہے، اور اس کرسی پر بیٹھنا، اس پر تقریر کرنا، اس پر بولنا، یہ بہت مشکل ہے، گو کہ آپ اس کو آسان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جو میری زبان سے نکلتا ہے یا آپ کی زبان سے نکلے گا، پھر میرا عمل اور آپ کا عمل، پھر اس پر گواہ بننا چاہیے۔ صرف تیاری نہیں مشکل ہوتی، اصل میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے درس دینے میں، آپ کو تو اتنا آتا ہے، فلاں کو کیا مسئلہ ہے، اس کو تو اتنا آتا ہے، تو لوگوں کو درس دینے سے پہلے اس دل ناداں کو درس دینا پڑتا ہے، اس جسم کے اعضاء کو، قوتوں کو، صلاحیتوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، ایمان کو تجدید کروانی پڑتی ہے، کچھ اپنے ٹارگٹ بنانے پڑتے ہیں، کچھ وعدے کرنے پڑتے ہیں، کچھ قربانی کے لیے اس نفس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کبھی ایک ہی آیت پر آپ غور کرتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے، آپ کے آنسو بہتے ہیں، آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ دوسروں کو کیا کہہ رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کہاں پہ کھڑی ہوں، میں نے دوسروں کو یہ درس دیا اور میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ بہر اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو علم کی بھی اور عمل کی دعا کرنی چاہیے، اسوہ حسنہ کی بات ہو رہی ہے، اور اہم بات کیا ہے کہ آج اگر آپ میں سے کسی کو کچھ آتا نہیں تو آپ سر جھکا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا استاد یا آپ کی ٹیچر، آپ خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے گھر میں یہ مسائل تھے یا حالات کی آگاہی ادھر ادھر سے یا ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کہے، جب آپ اس کرسی پر آ کر بیٹھیں گے نا تب آپ آئیں بائیں شائیں جب کریں گے، یا جیسے کبھی میں کروں گی، میں نے صحیح سے تیاری نہ کی ہو تو جو ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے اور جو دل کو ایک پریشانی ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پھر آپ سر جھکا نہیں سکتے، اس کرسی پہ بیٹھ کے تو سر اٹھانا ہی ہے آپ کو، تو پھر صحیح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا ہی ہے، آپ کی تیاری ایکسیلنٹ ہونی چاہیے، جو آپ کو آتا ہے، جتنا آپ کو آتا ہے، تو قائد جو ہے نا ہر طرح سے تیار ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں बाहर शोर की आवाज सुनी, कायद कैसे तैयार हुए, असलहा पहन कर बाहर गए। रात का वक्त है, कई कई बार कायद वो नहीं है कि कहे कि अब रात का वक्त है, मैं तो थका हुआ हूं, मैं कल फिर मैदान में निकलूंगा, तो अब जरा बाकी लोगों को कि तुम जाओ जरा खबर तो लो शोर की आवाज कैसी है। तो ऐसा ही कायद जो है वो बेहतरीन कायद जो है वो होता है। फिर आप देख लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके जो अमलों में, आपके जो रवैये में और किरदार में मेरे और आपके लिए नमूना है, इससे फिर और कौन सी बातें जो है वो मेरे सामने आती हैं। जैसे बाज़ोकत किसी से हमें, जब हमें कोई लोग अच्छे नहीं लगते या हमें या किसी का पता होता है कि वो लोग अच्छे नहीं है, एक तो ये ना हमें अच्छे ना लगना, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वाकई जो लोग अच्छे नहीं लगते हम तो उससे बात नहीं कर पाते, मुस्कुरा कर अच्छे तरीके से बात करना तो दूर की बात है। वो एक कोई आदमी आया था जो अपने कबीले का बुरा तरीन शख्स था, आपने उससे बड़े अच्छे से बात की, हजरत आयशा बड़ी हैरान हुई कि अभी तो आपने कहा था कि कबीले का बुरा तरीन शख्स है। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था उसका, कि मतलब मेरा जो मकाम है वो क्या है कि मैं लोगों के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाकर भेजा गया हूं। इस तरह का कुछ आपका पैगाम था कि बुरा तो वो है कि जिसके बुरे इखलाक की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें, तो इखलाक क्या है कि उससे मुझे अच्छे से ही बात करनी थी, मेरा रवैया यही है, लेकिन ये कि बहरहाल बताना जरूरी था कि लोगों को धोखा ना हो जाए, कि मेरे अच्छे तरीके से उससे डील करने की वजह से लोगों को ये धोखा ना हो जाए कि ये शख्स जो है ये अच्छा है, तो लोगों को आगाही हो कि ये शख्स अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये कि रवैया क्या है कि अच्छा ही होना चाहिए। तो बहरहाल इस बात को हम जो है वो समेटते हैं और इस बात को हम याद रखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा के साथ तकलीफों में साथ साथ हैं, हर जगह पे साथ साथ हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई खास इंतजाम है या स्पेशल इंतजाम है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इक्तदा है, जो उस्वा है, वो मेरे और आपके लिए जरूरी है। और आप इसको यूं भी मैं और आप इसको लिख सकते हैं कि आपका किरदार क्या है, तमाम आपके अकवाल, तमाम आपके अफआल और आपके तमाम अहवाल मुसलमानों को इसमें आपकी इक्तदा करना जरूरी है, चाहे इसका ताल्लुक इबादात से हो या माशरत से, मईशत से या सियासत से, जिंदगी के हर शोबे में आपकी हदायत वाजिबुल इत्तबा है। सूरत हशर की आप इस आयत को याद रख सकती हैं, मा अताकुमुर रसूलू फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे जो है वो रुक जाओ। तो फिर क्या बात हमारे सामने आई अमल के लिए और नचोड़ के लिए, कि गोया के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मेरे और आपके लिए जो है वो क्या है, नमूना है। तो उसूल के तौर पे फिर बात हमारे सामने क्या आई, जैसे सूरत हशर की आयत नंबर 7 का एक हिस्सा है कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। तो ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो है वो बेहतरीन नमूना, और आपकी जो भी तौर तरीके हैं उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करना। अच्छा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए नमूना कौन बनाएगा, कौन कौन बनाएगा? अच्छा, आप लोग सब जोर से बोले कि कौन नमूना बनाएगा? हम सब बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम कौन हैं? हाँ, क्योंकि हम आप सब लोग तो यहाँ मुख्तलिफ आपका नाम है, यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लकद कैना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसनतुन, के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरहकीकत तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है और एक बेहतरीन नमूना था, है ना? किसके लिए? लिमन, वास्ते उसके। मन जो, कौन? मन कौन के मानी भी देता है, जो के मानी भी देता है। हर उस शख्स के लिए ताना जो हो यरजुल्लाह, जो अल्लाह का अल्लाह की उम्मीद रखता हो, वल यौमल आखिरा और आखिरत के दिन का उम्मीदवार हो, वज़कर अल्लाह कसीरा और कसरत से अल्लाह को याद करे। अब आप देखिए कि किस तरह के लोग हैं जो रसूल अल्लाह को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जिनके अंदर ये तीन सिफात होती हैं, तीन सिफात जिनके अंदर होती हैं वही लोग अल्लाह की अल्लाह के रसूल का इत्तबा कर सकते हैं। तीन कंडीशन, तीन शराइत जिन लोगों के अंदर पाई जाती हैं। तो पहली चीज क्या है, यरजुल्लाह, के जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, जो अल्लाह जो है अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हो, तो अल्लाह ताला की तवक्को रखता हो, तो रिजा, इसके मानी क्या है, इसके मानी ये हैं कि जिसको अल्लाह की मुलाकात का यकीन हो। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान का मतलब ये है कि फिर अल्लाह से मिलना है, तो सिद्के दिल से उसको अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह की तमाम सिफात पर यकीन है ना, उसकी उम्मीद है और अल्लाह से मिलना है, और जब मिलेंगे अल्लाह से वो दिन कौन सा होगा, वल यौमल आखिरा, दूसरा दिन, आखिरत का दिन, और यौम आखिर का उम्मीदवार हो। तो इससे मुराद ये है कि वो शख्स जो है उसको इस बात पर यकीन है कि मुझे मरना है, मेरे अमाल का हिसाब किताब होना है। और तीसरी बात क्या है, वज़कर अल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह को याद करे। अब आप देख लीजिए कि इसके मानी ये हैं कि हर वक्त अल्लाह को याद रखे, ऐसा नहीं है कि वो उसकी जिंदगी गाफिल जिंदगी है, गफलत की जिंदगी है, कभी कभार इत्तफाकन उसने अल्लाह का नाम ले लिया है। कसरत से नाम लेने का मतलब क्या है कि हर वक्त अल्लाह को याद रखने वाला, हर वक्त जो है अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह ताला की अतात करने वाला। और आपको पता है कि जकारा, ये जो जिक्र है, इसके मानी क्या होते हैं, इसके एक मानी तो होते हैं याद करना, और दूसरे इसके मानी होते हैं बयान करना। आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, वज़कुर फिल किताबे मरियम, वज़कुर फिल किताबे इब्राहिम, वज़कुर फिल किताबे इस्माइल, तो बयान कर, वहां पे बयान करने के मानी में है ना। और जब आप पढ़ती हैं वज़कुरु, तो उस वक्त जो है वो याद करो के मानी में है। तो अब क्या है कि वो अल्लाह को याद भी करेंगे और अल्लाह अल्लाह करके लोगों को बयान भी करेंगे कि अल्लाह की कोई हकीकत है, अल्लाह ही दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो हकीकत है। तो ये तीन शराइत जो है मुसलमानों को बताई गई हैं कि जिसके अंदर ये तीन शराइत पाई जाती होंगी तो वो शख्स अल्लाह के रसूल को अपने लिए नमूना बना सकता है। अब यहां पे मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहती हूं। मसलन किसी की आपने खाई बिरयानी और उसकी खुशबू ही आपको बहुत अच्छी लगी, उसके चावल का दाना दाना अलग था, उसकी आपको डेकोरेशन बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि ये बिरयानी को मैं अपनी बिरयानी के लिए नमूना बना लेती हूं। अब आप नमूना बनाने के लिए क्या करती हैं, आप पूछती हैं अच्छा तो आप कौन से चावल इस्तेमाल करती हैं, फिर आप पूछती हैं कि अच्छा तो आप जो है कितनी देर पहले उसको भिगोती हैं, फिर आप पूछती हैं कि अच्छा आप मसाले कौन से इस्तेमाल करती हैं, सच सच बताएं आप रेडीमेड इस्तेमाल करती हैं कि घर का करती हैं, अच्छा ये मसाले तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ लेकिन जो आपके चावलों में खुशबू थी वो मेरे में तो नहीं है भाई, वो तो जो है वो हर शख्स उंगलियां चाट रहा था, है ना, तो आपने वो बिरयानी बनाई कैसे। फिर आप पता क्या करती हैं, आपको बता भी देता है, सारी बात हो जाती है, फिर आप कहते नहीं आप प्लीज मैं आपको बनाते हुए देख सकती हूँ, मुझे तो जब मैं देखती हूँ ना फिर आता है बनाना। तो आप बिरयानी को नमूना बनाएं या केक को बनाएं या आप रस मलाई को बनाएं, है ना, रस मलाई जो है मैंने आपकी रेसिपी पर बनाई लेकिन उसमें तो गुठली रह गई, केक मैंने आपकी तरह का बनाया, मार्बल केक आप बना रही हैं या आप फॉरेस्ट केक बना रही हैं या आप चॉकलेट केक बना रही हैं जो भी, लेकिन आप कहती हैं नहीं वो चीज नहीं है, फिर आप कहती हैं नहीं हर एक के हाथ का भी फर्क होता है। तो हम जब नमूना बनाते हैं तो तकलीद कैसे करते हैं, है ना, आप देखिए आपको कोई कोट पसंद आ गया है आप उसी दुकान पर जाती हैं उसी तरह का लेना चाहती हैं, आपको कोई स्वेटर का डिजाइन पसंद आ जाता है, आपको किसी कमीज का डिजाइन पसंद आ जाता है, आप वो कमीज ही ले लेती हैं, आप कहती हैं जरा पहले मुझे दे दो तुम तो बाद में पहनना, मैं भी जरा ऐसी जो है ना भेज के बनवा लू ना, घर आप किसी का आपको पसंद आ जाता है, आप कहते हैं घर में मार्बल का मैंने वो बनाना है इसी तरह का जैसे फलां ने जो था वो बनाया था। तो मैं अक्सर इस बात पे गौर करती हूँ कि जहां दिल जो है ना असल में दुनिया पे अटका हुआ है, बात खाने की हो, बात पहनने की हो, बात रहने की हो, तो जो जो चीज जहां जहां नजर आती है तो करते क्या है। शियाना पाकिस्तान गई तो प्लीज मेरे लिए भी दो जोड़े ले आना जो आजकल चल रहे हो, आजकल के डिजाइन के। शकीला गई, शकीला से कहते हैं प्लीज मेरे लिए भी दो जोड़े ले आना। फिर सुरैया गई तो कहते हैं तुम मेरे लिए भी ले आना। नुजरत गई तो प्लीज मेरे लिए भी ले आना। हालांकि हमारे पास बहुत होता है, कम नहीं होता, हर आने जाने वाले को पुकार पुकार कर, और फिर कोई चला जाए तो फिर उसका फोन लेके पीछे फोन करते हैं कि मेरे लिए भी सलमा आते हैं प्लीज ये ले आना, उस वक्त तुम जल्दी में चले गई थी ना। किसी को मैं और आप ना माफ नहीं करते, और जो जितना ज्यादा बेहतरीन दोस्त होता है उतना ज्यादा उसको तंग करते हैं, और मतलब भी इसका ये समझ लेते हैं ना। तो क्या हम क्या करते हैं, हम रोल मॉडल खुद बनना चाहते हैं, दुनिया हमें देखकर वाह वाह कहे, और हम में से अच्छा इस आयत के तहत हमारे लिए अमल का उसूल क्या है। आप में से हर शख्स ये नोट करे कि आपको अपनी जिंदगी में नंबर वन कौन सी शख्सियत पसंद है जिसको आपने अपना रोल मॉडल बनाया। इसको आप नोट करें बहुत तवज्जो से, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आप किताब भी लिख देंगे, आपको तो बहुत कुछ आता है, लेकिन ये कि अब तक आपने क्या किया, अब तक आपने क्या किया, है ना। एक दफा एक बता रही थी लड़की के मेरी जो टीचर थी ना, जब वो कपड़े पहन कर आती थी ना तो उसकी जो कमीज की क्रीज होती थी ना वो मुझे बड़ी पसंद आती थी। इस्त्री की क्रीज, इस्त्री करते हैं ना तो एक बन जाती है चीज, कभी कमीज की कभी शलवार की एक ऐसे लाइन सी बन जाती है। तो कहती हैं कि मैं सोचती थी कि ये ऐसी इनकी क्रीज कैसे बनती है ना। अब देखें वो वैसे ही इस्त्री करने की कोशिश करती थी। अब अच्छा जिसको आप पसंद करते हैं ना, आपके मुस्कुराने का स्टाइल उससे मिलता है। आप कभी नोट कीजिएगा इस बात को, जिसको आप पसंद करते हैं ना उसके जुमले आपकी गुफ्तगू में मिलने लगते हैं। आप उसकी तरह चलना चाहती हैं, आप उसकी तरह बोलना चाहती हैं, आप उसकी तरह रहना चाहती हैं, आप उसकी तरह जिंदगी गुजारना चाहती हैं। जिसको भी इंसान पसंद करता है, और जिसको पसंद करता है ना, अकेले भी बैठा हुआ है, रात का वक्त है, सब सो रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रही हैं, आप पेपर की तैयारी कर रही हैं, आपको वो शख्स याद आ रहा है, आप उसके ऊपर बैठी पैरों सोचती हैं, पैरों बैठ कर आप उस पर सोचती हैं, जिससे मोहब्बत करती हैं, जिसको पसंद करती हैं, जिसको अपनाना चाहती हैं। तो एक होमवर्क क्या है कि मैंने अब तक किससे मोहब्बत की और किसको अपना रोल मॉडल बनाया। एक दफा एक लड़की की शादी हुई और हमारे वो रिश्तेदारों में ब्याह कराई, और उसके कमरे की डेकोरेशन करने वालों में मेरा हिस्सा भी शामिल था। अब उसके बाद जब वो आई तो उसने अपने कमरे की खास तरतीब रखी, तो फिर बातों बातों में कहने लगी कि ये जो कमरे की मैंने सेटिंग की है ना, ये फलां फिल्म के फलां सीन में, वो कोई इंडियन मूवी थी, उसने मैंने कमरे की ये सेटिंग देखी थी जो मैंने की है। मैं तो उसको उसकी बात को सुनती रह गई, उसकी बात को देखती रह गई, क्योंकि जिंदगी दूसरी डगर पर चल चुकी थी, और मैं सोच रही थी कि अच्छा ऐसे भी होता है। आप देख लें कि ड्रामे, फिल्में, रसायल, मैगजीन, इसमें जो मॉडलिंग करने वाले लोग होते हैं वो तो पैसे ले रहे होते हैं, वो तो उन्होंने मॉल के अंदर जो चीजें होती हैं उनको बेचना होता है, उनका टारगेट होता है, उनको प्रॉफिट मिलता है, उनको बोनस मिलता है, वो तो दुनिया के लिए जी रहे होते हैं, और हमारे जैसे भी जो अहमक लोग हैं फिर वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि फिल्मी एक्टर को रोल मॉडल बनाया, ज़ेबा पसंद थी या नदीम, मुझे उन्हीं के अभी नाम आते हैं, नए कौन से हैं मुझे उनका नहीं पता। तो बहरहाल जो है मेरा फिल्मी एक्टर जो है कोई रोल मॉडल रहा, या फिर ये कि मुझे कौन सा गाना पसंद था तो क्यों पसंद था, मुझे ना बेशक आप बताएं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, या फिर ये कि मुझे जो है वो खिलाड़ी कौन सा पसंद है, इमरान खान है, या फिर कौन सा प्लेयर जो है वो मेरा रोल मॉडल है, या फिर मॉडलिंग करने वाली मेरे लिए मुझे कौन सी पसंद है, या फिर कोई भी, आप बाकी खुद आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो बहरहाल मुझे क्या पसंद है, पहले क्या था, जरूर इसको आप अपने सामने लाएं, और उसके बाद अब मुझे क्या पसंद है जब से आपने कुरान पढ़ना शुरू किया, शौरी तौर पर, बेशक आप इस क्लास को कह लें या जब भी आपने कुरान का सफर शुरू किया, अमल का सफर शुरू किया। तो फिर मैंने किसको पसंद करना शुरू किया, और अब तक जितने हमने पैगंबरों के बारे में पढ़ा सारे ही उनकी जिंदगी हमारे लिए उस्वतुन हसनतुन है, लेकिन कुरान में दो पैगंबरों के लिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज कहा है उस्वतुन हसनतुन का, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बारकल्ला फी, अल्लाह आपके इल्म में और अमल में बरकत दे, आपने ये जवाब बताया। तो बहरहाल दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और योम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे, कसरत से अल्लाह को याद करे। कसरत से मुराद जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, सुबह भी, शाम भी, रात को भी, दिन को भी, सेहत में भी, बीमारी में भी, घर के अंदर भी, सफर में भी, गोया कि किसी हाल में फिर अल्लाह को छोड़े ना। कसरत है मतलब क्या है, कसीरा है ना, किसी वक्त भी आप भूले ना, भूले नहीं, फोन पर बैठी हैं घंटों बात कर रही हैं, अल्लाह नहीं भूलना चाहिए। सारी बातों के अंदर एक बात, एक पैगाम, पैगाम जो सब पे लीड कर रहा हो वो अल्लाह की याद का होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, मेरा और आपका कोई भी रवैया, कसरत से अल्लाह को याद करना चाहिए। तो बहरहाल अब मेरा और आपका जो असल नमूना है उस वक्त उन हसना कौन होना चाहिए, किसकी इक्तदा करनी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कुरान का मताला करें और फिर सीरत का। वलम्मा रअल मोमिनून अल अहजाब, और जब मोमिनों ने अहजाब को देखा, तो अब ये किस कौन से किसकी बात हो रही है, कौन से अहजाब है, ये अभी तक जिक्र चल रहा है गजवाए अहजाब का, और गजवाए अहजाब में बीच में रसूल अल्लाह का जिक्र आ गया कि पूरे गजवा के दौरान, गजवा की तैयारी में, गजवा के दौरान जो है वो, और गजवा खत्म होने पर हर हाल में रसूल अल्लाह का किरदार है सहाबा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना था और नमूना है। और जब देखा मोमिनों ने अहजाब को, सच्चे मोमिन जो थे उस वक्त उनका हाल क्या था कि जब उन्होंने अहजाब को देखा, जब उन्होंने जो है वो कुफार को देखा और जो इर्द गिर्द के कबाइल जमा हो गए थे उनको देखा, कालू वो बोले हाजा मा वादन अल्लाह व रसूलहू, ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था। वसदकल्लाहु व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सच्ची थी। अब आप देखिए कि उनका ये कहना कि ये तो वही चीज है, हाजा मा, ये तो वही चीज है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया था, और अल्लाह और उसके रसूल की बात जो थी वो सच्ची थी। तो इस बात को समझने के लिए आप आयत नंबर 12 को भी अपने सामने रखें, है ना, आयत नंबर 12, उसमें क्या है, वइज यकूलुल मुनाफिकूना वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन मा वादनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। उन्होंने क्या कहा, जिनके दिलों में रोग था, मुनाफिकीन के दिलों में, वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमसे वादे किए थे वो फरेब के सिवा कुछ भी नहीं थे, वो तरह तरह की बातें करने लगे। और जो सच्चे अहले ईमान थे उन्होंने जो है वो क्या कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच्ची थी। और कब उन्होंने ये बात कही, बाज कहते हैं ना कि 10,000 का लश्कर था, बाज कहते हैं 15,000 का लश्कर था। तो अब क्या है कि 10-12 हजार का लश्कर सामने खड़ा है और बनू कुरैदा के लोग पीछे से हमला कर रहे हैं। अब वो पुकार पुकार कर कहने लगे कि सारे वादे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे किए थे तो वो सारे वादे जो थे वो सच्चे थे, सारे वादे सच्चे थे। और वो वादे क्या थे, वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चट्टाने तोड़ी थी तो उस वक्त आपने क्या क्या खुशखबरियां दी थी, है ना। अब ये कह रहे हैं कि वादे सच्चे हैं, मुश्किल वक्त में भी कह रहे हैं कि वादे सच्चे हैं। और मुनाफिक उस वक्त क्या कह रहे थे, मुनाफिक ये कह रहे थे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने झूठी बातें कही थी। अब कैसरो किसरा के खजाने हमें मिल जाएंगे और इस वक्त जो है ना तो कोई फरिश्ते आ रहे हैं जो हमें इस मुसीबत से बचा सकें, और हम तो बाथरूम तक नहीं जा सकते, घर हमारे उल्टे खतरे में हैं। मुख्तलिफ बातें आप पीछे जो है वो पढ़ चुकी हैं। एक तो इसके ये मानी है कि अल्लाह और इसके रसूल के वादों का एक मतलब क्या है कि जो झूठे जो मुनाफिकीन ने समझा था वो वाला मतलब, उसके उलट ये वाला मतलब कि हाँ कैसरो किसरा फतह होगा, फरिश्तों की फौजें जरूर आएंगी, क्योंकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं, अल्लाह की बातें जो है वो सच्ची नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो इसका ये मतलब है, समझ आ गई आपको कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो भी वादा किया है वो झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सारे वादे जो हैं वो सच्चे वादे हैं। दूसरे इसके एक और मानी भी हैं, वो क्या मानी है कि अल्लाह ताला ने वादे किए हैं कि मैं फरिश्ते आएंगे, फतह होगी, तुम गालिब रहोगे, लेकिन कब? सूरत अल बकरा आयत 214 को आप सामने रखें। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल्लजीना खलौ मिन कब्लिकुम मस्सतहुम अलबासा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यकूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह अला इन्न नसरल्लाह करीब। तो उनको क्या बात समझ में आई? आप ये पढ़ चुकी हैं कि इसका मतलब ये था कि जो सादिकुल ईमान मुसलमान थे, उन्होंने इस बात को समझा कि खतरात के आते ही अल्लाह के वादे पूरे नहीं होंगे। उनको अल्लाह के वादे याद तो आए, लेकिन उनको ये बात भी पता थी कि ईमान लाते ही उंगली हिलाए बगैर हम सरफराज नहीं होंगे, हम कामयाब नहीं होंगे, बल्कि क्या है, उसके लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। उसके लिए जब हम कुर्बानियां देंगे, जब हम आजमाइशों पर पूरा उतरेंगे, फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी। मता नसरुल्लाह, है ना, जब रसूल ने कहा और ईमान लाने वालों ने कहा मता नसरुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब। इसी तरह सूरत अंकबूत आयत 2 और 3 को आप अपने सामने रखें। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ। इससे क्या बात पता चलती है? इससे भी ये बात पता चलती है कि उनको ये बात याद होगी थी, ईमान और आजमाइश लाजिम और मलजूम है, कि हम जो ईमान लाए थे, अब उसके नतीजे में हम आजमाए जा रहे हैं, और आजमाइश का मकसद ये है, अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। तो जो आजमाइश में पूरा उतरेंगे, उन पर जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें होंगी, अल्लाह की अनायात होंगी, फिर फतह और नुसरत की राहें खुलेंगी, फिर फरिश्ते उतरेंगे, फिर अल्लाह की मदद आएगी। तो कालू हाजा मा वादन अल्लाह व रसूलहू, तो वो पुकार उठे कि ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। तो इसका मतलब क्या है, ये वही आजमाइश है जो ईमान के नतीजे में आने वाली है। और फिर इसका मतलब क्या है कि यानी ये जो कैसरो किसरा और हर तरफ जो है वो मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी, फतह जो मिलेगी, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के वादे झूठे नहीं हैं, और उसके रसूल के वादे भी सच्चे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानं व तस्लीमा, इस वाक्य ने उनके ईमान और उनकी सपुर्दगी को और बढ़ा दिया। वमा ज़ादहुम, तो जो आजमाइश आई ना, तो आजमाइश से वो गिर नहीं गए, वो टूट नहीं गए, वो स्कैटर्ड नहीं हो गए, वो बिखर नहीं गए। आप अपनी जिंदगी का जायजा लें, किसी के घर खुदा ना खास्ता कोई मौत हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट की खबर आ जाती है, कोई अचानक बड़ा अजीब हादसा होता है, जॉब छूट गई, शौहर की छूटी थी बेटे की भी छूट गई, घर जो है वो मसाइल की अमाजगाह बन जाता है। तो आजमाइशें जब आती हैं तो अहले ईमान गिरा नहीं करते, टूटा नहीं करते, जो है वो बैन नहीं डाला करते, शिकवे शिकायतें नहीं किया करते, अल्लाह को या इस्लाम को बुरा भला नहीं कहा करते, फिर वो क्या करते हैं, वमा ज़ादहुम, बल्कि क्या हुआ कि और नहीं ज्यादा किया उनको और नहीं बढ़ाया उनको इल्ला मगर, यानी गज़वाए अहज़ाब पे जो हर तरफ से आजमाइश पे आजमाइश आती चली गई, कि एक तरफ कुफर हर तरफ से टूट कर आ गया। आप सोचें तो सही, इस बात पर आप सोचें, मैं इसी बात पे सोचती हूं। मसलन आपने खाना पकाया है, आपने खाना पकाया एक फैमिली का, आपके घर आ जाए, थोड़ी देर में दूसरी फैमिली आ गई, थोड़ी देर में तीसरी फैमिली आ गई, थोड़ी देर में चौथी भी आ गई, आप तो घबरा जाते हैं कि अब खाने का टाइम है, एक के बाद दूसरा आता चला जा रहा है, अब करें क्या, हाथ पांव फूल जाते हैं ना, बाजू का चीजें पड़ी भी होती है, नजर नहीं आती, समझ नहीं आती ना। एक मिसाल दे रही हूं आपको छोटी सी, या थोड़े से पैसे हैं और खर्च बहुत सी जगह पे करने हैं, अब बच्चे की फीस दूं, या जो बीमार हो गया उसका मैं इलाज करवाऊं, या फिर ये कि मैं घर के अंदर जो है वो कम अज कम आटा दाना डालकर मैं घर की जो खाने पीने का इंतजाम है मैं उसको चलाऊं, तो मैं करूं क्या ना। तो इंसान क्या होता है, परेशान हो जाता है, मुसीबत जो भी आती है, कि बीमारी है, कोई हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है और लंबी बीमारी है, अब मैं घर को देखूं क्या, हॉस्पिटल को देखूं, बच्चों को देखूं या फिर वो जो फोन आ रहे हैं मैं उनको अटेंड करूं? आपको उस वक्त वो नेमत नहीं लगती कि लोग मेरी आदत कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, आप सोचते हैं कि अब मैं करूं क्या? आप थके हारे आप सोचते हैं थोड़ी देर आराम ही कर लूं, लेकिन लोग जो आपसे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, वो आपकी आपके पास आना चाहते हैं, पुरसा करना चाहते हैं, है ना? तो असल बात क्या है कि जो भी आजमाइशें आती हैं तो बढ़ाती हैं उनके ईमान को। तो यहाँ पे गज़वे अहज़ाब की बात हो रही है, उसके वाकयात की, कि भूख की किल्लत है, दूसरी तरफ मुहासरा बढ़ता चला गया। मैं ये सोच रही थी कि 24-25 दिन तकरीबन एक महीना तक खंदक की हिफाजत और इस बात का खौफ और हिरास कि दुश्मन हमला ना कर दे, एक महीना तक, ये तो असाब को तोड़ देता है। और फिर वो आते भी थे, हमला करते भी थे, है ना? अब दूसरी तरफ पीछे बच्चे हैं, औरतें हैं, कितनी परेशानी का वक्त है। आप तसव्वुर तो कर रहे, पूरा एक महीना, तकरीबन एक महीना, एक दिन दो दिन सभी तकलीफ उठा लेते हैं, भूखा रह लेते हैं, भूख भी लगी हुई है, बच्चे और औरतें भी जो है वो खतरे में हैं, नींद की कमी भी है, असलहा भी ज्यादा नहीं है, सर्दी भी शदीद है, बाहर मौसम बड़ा खराब है। वो वाकया कि हजरत हुजैफा को और हजरत जुबैर जो गए हैं खबर लेने के लिए, क्या पता चलता है, मौसम बड़ा खराब है। और आप इन दिनों में स्नो सीजन में आप ना एक होमवर्क चाहें तो, क्योंकि आप परेशान भी कहीं हो ना जाएं, सिर्फ मैं और आप अपने अमलों का जायजा लें, आप सिर्फ ये होमवर्क करें कि आप इस सीजन में कितनी दफा स्नो का शिकवा करती हैं, बर्फ का शिकवा करती हैं, सुबह से लेकर रात तक फोन पर दोस्तों से, बच्चों से और अपने शोहर से, इर्द गिर्द कितनी दफा आप ये कहती हैं मौसम खराब है। पाकिस्तान वालों से बात करती हैं, ये भी कोई जीना जीना है, ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई खाना है, कोई लाइफ नहीं है। कितनी दफा मैं और आप ये कहते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। तो अगर मैं और आप इस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दें, आपके ज्यादा शिकवा करने से आपकी एनर्जी तो जाया होती है, मेरी भी एनर्जी भी जाया होती है, अल्लाह के हाँ मैं न शुक्रों में शामिल हो जाती हूँ, और आप भी अगर आप ऐसा करती हैं। और क्या होता है कि वही जिंदगी जो मैंने शिकवा करने में जाया कर दी, उसको मैं जो है वो इसमें क्यों ना जाया करूं, जाया नहीं, इसमें मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं, जिक्र अल्लाह कसीरा, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, है ना, अल्लाह की बंदगी करना। तो वही नवाफिल पढ़ा जाए, फिर उसके बाद जो है वो अजकार किए जाएं, कोई अच्छा काम किया जाए, क्योंकि आपके ज्यादा, आप कहती हैं स्नो बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, अब तो सब्जी वाला भी नहीं आता, कितनी मुसीबत है, पहले वो आ जाता था, अब तो जो है वो हम चल भी नहीं सकते, बहुत सी हम बातें करते हैं, लेकिन आपके ऐसे कहने से हालात तो नहीं बदल जाते ना। तो क्या करना चाहिए, हम कमर ठोक कर, कमर बांध कर, जो भी हालात आ रहे हैं, जहां पे मैं और आप रह रहे हैं, यहाँ की फायदे तो सब उठाना चाहते हैं, मुसीबत आती है तो फिर चीख चिल्ला उठते हैं, ये तो कोई बात ही ना हुई। तो फिर क्या करना चाहिए कि आजमाइशें आती हैं, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, है ना, वो तो पत्थर है जो गिर पड़ते हैं टुकड़े होकर, हौसले भी कभी मिसमार हुआ करते हैं। गमे जिंदगी गमे बंदगी गमे जाविदा गमे दो जहां, मेरी हर नजर तेरी मुंतजर, तेरी हर नजर मेरा इम्तहां। वमा ज़ादहुम इल्ला, नहीं ज्यादा हुआ मगर उनके लिए किस चीज में उनके इजाफा हो, ईमान व तस्लीमा। ये बड़ी खूबसूरत बात कुरान ने कही है और पूरे के पूरे दीन और इस्लाम को समेट कर रख दिया है। एक है ईमान और दूसरा है तस्लीम। और क्या है ईमान का मतलब, क्या है, तीन चीजें आपने इसमें पढ़ी थी ना ईमान के अंदर। एक है ईमान का ताल्लुक दिल से है, जबान से है और फिर जवारे से है। और दिल में आप क्या करते हैं, यकीन करते हैं, दिल दिमाग मानता है उस बात को, जबान उसका इजहार करती है, इकरार करती है, और अमल जो है फिर उस पर विटनेस बन जाता है, जिस्म के अज़ा उस पर गवाही बन जाती है। और आपने ईमान की तारीफ भी याद की थी, है ना, अल ईमानु अत तस्दीकु मल कबूली वल इज आन, है ना। तो इनके ना 10 नंबर बोनस ज्यादा आप शामिल कर लें, इसलिए कि जब भी कोई तारीफ की बात होती है ना किबर पर भी, बाद में सब सुनाने लगे, शुरू में जब मैंने पूछी थी तो इन्होंने सुनाई थी शकीला ने, और आज भी ईमान की तारीफ इन्होंने सुनाई है। तो आपको भी याद करनी है, मुझे भी याद करनी है, जब तक सबक याद नहीं होगा ना उस वक्त तक हमारे अमल में नहीं उतरेगा। तो ईमान की तारीफ ही क्या है, तस्दीक और फिर जो है वो अमल करना है इज़ान के साथ। और मैंने आपको बताया था ना इज़ान कैसे कहते हैं, किसे इज़ान किसे कहते हैं, ऐसी ऊंटनी जो अपने मालिक की अतात के लिए जो है ना बस खींची चली आए। आप पता है ऊंटनी जो है या ऊंट जो है, मालिक उसको बिठा दे तो बैठ जाता है, बैठ जाती है, खड़ा कर दे ऊंटनी को तो ऊंटनी खड़ी हो जाती है, या ऊंट बैठ जाता है खड़ा हो जाता है। ऊंट जो है ना बाकी जानवरों की निस्बत ज्यादा मुती और फरमाबरदार होता है। छोटा सा बच्चा भी उसको लेके चलता है ना, उसकी रस्सी को थाम कर चलना शुरू हो जाता है। छोटा सा बच्चा इतने बड़े अजीमुल जुस्सा जानवर को बिठाता है तो वो बैठ जाता है, भूखा प्यासा उसको सहरा में चलाते रहे चलता रहता है। ऊंट या ऊंटनी शिकवा नहीं करता, भूखा प्यासा बड़ा अरसा तक चलता है। तो अरबों के यहां ऐसी ऊंटनी जो बड़ी अतात वाली ऊंटनी होती थी उसके लिए आता है, ऐसी ऊंटनी नाकतुल जो है वो इज आनुन, यानी बड़ी जो है मुती ऊंटनी। तो ईमान भी इसी का नाम है कि हम जो है उसकी पहले तो तस्दीक करें और फिर उसके बाद जो है फिर अतात करें। तो यहां पर क्या है कि उनके ये जो वाकया था, इस वाकये ने उनके ईमान में इजाफा किया। तो आजमाइशें जो आती हैं क्या मेरे और आपके ईमान में इजाफा करती हैं? आप खुद नोट कर लें कि आपकी जिंदगी में इस वक्त बड़ी आजमाइश क्या है, 1, 2, 3 आप उसको लिख लें, जो भी आजमाइश है आपकी, कुछ भी हो सकती है, हर एक की आजमाइश मुख्तलिफ है, उसको आप नोट कर लें। तो क्या उस आजमाइश से मैं रोती रहती हूं या मेरा ईमान बढ़ता है, आप ये नोट करें। फिर दूसरा है वह तस्लीमा, और तस्लीम किसे कहते हैं, इसका जैसे अगर आप रूट देखें तो तस्लीम जो है ये हरूफ का की ज्याती है, एक होता है सलामा और एक होता है असलमा। सलामा होता है सलामती और असलमा होता है सुपुर्द कर देना। तो तस्लीम जो है, तस्लीम के मतलब क्या है, सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द कैसे कर दिया, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, सुपुर्दगी, अपने आप को किसी के हवाले कर देना। किसके हवाले, इस्लाम के, अल्लाह के। तो ये जो वाकया था कि हर तरफ से काफिर टूट पड़े और फिर हालात इतने सख्त थे, इस वाकये ने उनके ईमान और उनकी सुपुर्दगी जो है इसको और ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया। मुसीबतों की जो मुसीबतों का तूफान था, इसमें मुतजलजल होने की बजाय क्या हुआ, अल्लाह की फरमा बरदारी में जुट गए, भागे नहीं, यकीन और इत्मीनान के साथ उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के सपुर्द कर दिया। तो ये बात याद रखिएगा और इस बात को आप नोट कर लें कि ईमान और तस्लीम, इस ये नोट कर लें, दरअसल नफ्स की ऐसी कैफियत का नाम है जो दीन के हर हुक्म और हर मुतालबे पर इम्तहान में पड़ जाती है। हर ऐसी कैफियत के एक तरफ दीन का हुक्म और दीन का मुतालबा होता है और दूसरी तरफ जिंदगी में कदम कदम पर ऐसे मवाके आते हैं, दीन किसी चीज का हुक्म दे रहा है या किसी चीज से मना कर रहा है, या जान माल वक्त और मेहनत ख्वाहिशात की कुर्बानी का मुतालबा कर रहा है। अब ऐसे मौके पर ना आपका नफ्स एक कैफियत से दोचार होता है, एक तरफ ख्वाहिश है एक तरफ दीन का मुतालबा है, एक तरफ जो है वो आपका ये दिल चाहता है कि आप जो हैं वो आराम करें, आप सो जाएं, आप अपनी मनमानियां करें, और दूसरी तरफ जो है अल्लाह का मुतालबा कुछ और होता है। मसलन नमाज पढ़नी है, मसलन माल में दूसरों का हिस्सा है, ज़कात इन्फाक है ना। तो ये क्या है कि अगर अताअत कर रहे हैं तो ईमान और तस्लीम में इजाफा हो रहा है ऐसे मौके पर, अगर जो है अमल नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को हम झुका नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि ईमान में और तस्लीम में कमी हो रही है। याद रखिएगा, ईमान ना कोई ठोस चीज नहीं है, ईमान जो है बल्कि क्या है, लिक्विड है, माया है। ये जो है या तो घटता है या बढ़ता है, या इसको तनज्जुल होता है या इसका जो है इर्तका होता है, या इसको बुलंदी मिलती है या इसको पस्ती मिलती है। तो अब सोचना है कि ईमान में हटते 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 ऐसा तो नहीं ईमान की सरहद पर आकर खड़े हो गए जो कि कुफर से मिल रही है ना, बढ़ते 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 तो एहसान के दर्जे में पहुंचेंगे ना। तो बहरहाल जब इंसान ईमान में बढ़ता चला जाता है तो सिद्दीक बन जाता है, सिद्दीकियत के मकाम पर पहुंचता है, है ना, फिर एहसान के दर्जे पे पहुंच जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो अहम बात है वो क्या है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उनसे हमें क्या बात पता चलती है कि असल चीज क्या है कि ईमान जो है ना वो क्या करता है कि ईमान जो है ना, जो एक अच्छा मुसलमान है उसका ईमान जो है वो बढ़ता चला जाता है ना। ईमान, एक अच्छे मुसलमान का ईमान जो है, ईमान से बढ़कर तस्लीम, सिद्दीकियत और एहसान के दर्जे पे है, चला जाता है। बहरहाल अच्छा, जिनका ईमान जो था वो बड़ा और वो तस्लीम और रजा का पैकर बन गए, वो कौन थे? मिनल मोमिनीना रिजाल, उन मोमिनों में से रिजाल थे, ईमान लाने वालों में से रिजाल थे। रिजाल कौन लोग होते हैं? मजबूत लोग, कवी जिस्म रखने वाले। यहाँ पे ना इंसान आया है ना मर उनका लफ्ज आया है, बल्कि रिजाल उनका लफ्ज आया है ना। तो वो ऐसे लोग थे जो मजबूत जिस्म रखने वाले थे, गोया के कवी उल ईमान थे, जिस्मानी तौर पर भी, ईमान के लिहाज से भी वो मजबूत ईमान लाने वाले थे। सदाकू, तो उन्होंने सच कर दिखाया, मा आहदुल्लाह अलैह, जिन्होंने अल्लाह से उन्होंने जो वादा किया था, तो उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को जो है वो सच कर दिखाया। सदाकू, सच कर दिखाया, मा आहदुल्लाह, जो उन्होंने अहद किया था। तो यहाँ पे आहदू है तो अल्लाह से उन्होंने कुछ वादे किए थे, तो उसको क्या किया, उसको सच कर दिखाया। अब आप देखिए कि यहाँ पे मोमिनीन की किस्में बताई जा रही हैं कि जो मोमिनीन थे, जो ईमान और तस्लीम की तस्वीर बन गए और जो रिजालुन थे, तो उनकी पहली किस्म जो है वो क्या बताई जा रही है? पहली किस्म ये बताई जा रही है कि अहद करने वाले, माहद, जिन्होंने जो है वो अहद किए, सदकू माहदुल्लाह अलैह। अहद करने का क्या मतलब है? अहद करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला से वादे किए, और उन्होंने वादे कब किए? मसलन आप देखें, हजरत अंस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बल्कि अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूं कि ये आयत मेरे चचा अंस बिन नदर के हक में नाजिल हुई है। ये बुखारी की रवायत है। क्यों उनके हक में नाजिल हुई? हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरा नाम मेरे चचा अंस बिन नदर के नाम पर रखा गया। वो जंगे बदर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर ना हो सके, और ये बात इन पर बहुत शाक गुजरी, और कहा कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का पहला मौका था जिससे मैं गायब रहा। अल्लाह की कसम, अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर होने का कोई मौका आया तो अल्लाह ताला खुद देख लेगा कि मैं क्या कुछ करता हूं। रावी कहता है कि फिर वो डर गए कि इन अल्फाज के अलावा कुछ और लफ्ज कहना मुनासिब था। फिर जब अगले साल ओहद के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर हुए तो उन्हें राह में सात बिन मुआज मिले। किनको सात बिन मुआज मिले? अंस बिन नदर रजी अल्लाह अन्हु को। उन्होंने पूछा, अबू अमर कहाँ जाते हो? अंस बिन नदर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, वाह, मैं तो ओहद के पहाड़ में जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ, ओहद के दामन में। चुनाचे वो बड़ी जुर्रत से लड़े, हत्ता के शहीद हो गए, और इनके जिस्म पर जरबों, नेजों और तीरों के 80 से ज्यादा जख्म पाए गए। मेरी फूफी रबी बिन नदर कहने लगी, मैं अपने भाई की नाश को सिर्फ इसके पोरों से पहचान सकी, जो हाथ के पोर है उनसे पहचाना। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। तो ये जो रबी बिन नदर थी, ये अंस बिन नदर की क्या लगती है? बहन लगती है। मैं चाहती हूँ पता चले आप जाग रहे हैं। अंस बिन नदर की बहन लगती हैं, ठीक है, और अंस बिन मालिक की क्या लगती हैं? फूफी लगती हैं, सही। अच्छा, इसी तरह एक और वाकया मिलता है। मूसा बिन तलहा कहते हैं कि जब मैं मुआविया के यहाँ गया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खुशखबरी ना सुनाऊं? मैंने कहा, जरूर सुनाओ। उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि तलहा इन लोगों में से थे जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके। ये वो बुजुर्ग हैं जो गजवाए उहद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने हाथ पर तीर रोकते रहे, हत्ता कि एक हाथ शल हो गया तो दूसरा हाथ आगे कर दिया था। یہ بخاری کی روایت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا ہذا ممن قضا نحبہ. کیا کہا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ ہذا ممن قضا نحبہ. اب آگے آپ دیکھ لیں, پہلا تو ہے نا کہ کچھ لوگوں نے عہد کیا. آپ دیکھیے آیت نمبر 23 میں کیا پڑھ رہی ہیں, مومنین کی ایک قسم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدے کیے. وعدے کیا؟ کہ ہم قربانی کریں گے, ہم انفاق کریں گے, ہم جانوں کے نذرانے پیش کریں گے, ہم یہ اور یہ اور یہ کریں گے, ہے نا. تو وعدے کیے, بہت سے وعدے کیے. دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت پھر آگے کیا بتاتے ہیں, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, پھر ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی نحب کو پورا کر چکا. مونہا با, اونٹ کا کھانسنا, بلند آواز سے رونا. اب گریا یا کھانسی کیا ہے؟ تکلیف ہے نا انسان کو, تو اس طرح یہ لفظ موت کے لیے بھی آتا ہے. اور پھر یہ لفظ جو ہے یہ وقت کے لیے بھی آتا ہے, کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے. اسی طرح جب بھی مشکل تکلیف کا وقت ہوتا ہے, گریا میں انسان ہوتا ہے, تو انسان کیا کرتا ہے؟ نظریں مانتا ہے, منت مانتا ہے, وعدے کرتا ہے, ہے نا. تو کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ من قضا نحبہ, کہ جس نے اپنی نحب کو پورا کر دیا, جس نے اپنی نظر کو جو ہے وہ پورا کر دیا, جو وعدہ کیا تھا نا وہ انہوں نے پورا کر دیا, جو عہد کیا تھا نا انہوں نے اس کو جو ہے وہ پورا کر کے جو ہے وہ دکھا دیا. تو آپ جو ہے آپ یہاں پر جو ہے یہ بات دیکھیں کہ اس سے جو ہے پھر ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ ایک صحابی نہیں تھے کہ جس نے جو ہے وہ وعدہ کیا تو اس کو پورا کر دیا. بہت سے صحابی ہیں, کوئی بدر میں ہمیں ملتا ہے, کوئی احد میں ملتا ہے, اور کوئی جو ہے وہ ہمیں غزوہ احزاب میں ملتا ہے, یا پھر عام جو زندگی کے بہت سے معمولات ہیں, تو اس میں صحابہ کی پوری ایک کھیپ ہے, پوری ایک قطار ہے, ایک لائن ہے, جو کہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں, اللہ کی عبادت میں, اور اللہ کی اطاعت میں جو ہیں وہ آگے ہی آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے ساری زندگی مقابلہ کرتے رہے. یاد ہے آپ کو بھائی کا نام کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا ان کے بھائی تھے اور دوسری ماں سے تھے, ان سے جو تھے وہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے ایمان لائے اور پھر شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی جو تھے وہ کہتے تھے کہ میرا بھائی جو ہے ایک تو ایمان لانے میں مجھ پہ سبقت لے گیا, اور دوسرا جامع شہادت پانے میں, زید بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو بہرحال اس سے ہمیں پھر کیا بات پتا چلتی ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, نیکیوں میں جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہیں. تو یہاں پر نحب کے معنی عہد کے, نظر کے, اور موت کے کیے ہیں مفسرین نے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو صادقین تھے, جو صادقین میں رجال تھے صادقین میں سے, انہوں نے کچھ نے تو اپنا عہد اور نظر جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے جامع شہادت جو ہے وہ نوش کر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو منتظر ہے, یعنی شہادت کی سعادت کا آرزو مند ہے. ابھی نظر یا عہد جو اس نے کیا تھا ابھی اس کا پورا نہیں ہوا, لیکن اس کا انتظار کر رہا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جو ہے نا وہ شہادت دینا, اور انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ مدینہ تو رسول میں رہوں اور مجھے شہادت بھی نصیب ہو. تو غزوہ احزاب میں تو نہیں شہید ہوئے, وہ بہت دیر بعد شہید ہوئے, ہے نا. خنجر جب کسی نے مار دیا تھا, جب آپ نماز پڑھا رہے تھے, جب آپ خلیفہ تھے, اور تقریباً آپ کی خلافت بھی تقریباً 10 سال کے قریب بنتی ہے, تو پھر آپ ہوئے. تو اب کیا ہے, منہ من ينتظر, اور کوئی اس میں سے منتظر ہے. تو بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ یہ تمنا ان کی تھی, یا ان کی منت تھی, یا ان کا وعدہ تھا کہ اللہ کے راستے میں ہم قربانی کریں گے, جان کی, مال کی, کسی بھی چیز کی. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. तो ऐसा नहीं हुआ कि जब देखा कि लोग शहीद हो रहे हैं तो डर गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भी मैं अपना वादा वापस लेता हूँ, मैं अपना जो वायदा है उसको खत्म करता हूँ, ऐसा कोई उन्होंने ऐलान नहीं किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो यहाँ पे क्या बताते हैं कि गोया के हमारे सामने जो है वो जो मोमिन है इनकी चार किस्में आई हैं। एक है मुआयदा करने वाले, दूसरा है जिन्होंने मुआयदा नहीं किया लेकिन वो रिजालुन सदकू तो थे ना, मुआयदा तो कोई नहीं किया उन्होंने। फिर जो है वो जिन्होंने मुआयदे किए थे उनमें से कुछ तो शहीद हो गए, है ना, ये तीसरी किस्म हो गई कि शहीद हो गए, जान के नजराने पेश कर दिए। और चौथी किस्म क्या है, जो मुंतजर शहादत हैं, अभी शहीद नहीं हुए। ठीक है, बन गई आपके पास में चार किस्में। कि अब ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं फमिनहुम मन कदा, उनमें से कोई ऐसा है जिसने वादा किया, जिसने अपनी नजर को पूरा किया, इसका मतलब जिसने नजर मानी थी उसने नजर पूरी की ना, कुछ लोगों ने नजर मानी नहीं। तो नंबर एक अहद करने वाले, मुआयदा करने वाले, दूसरे नंबर पे जिन्होंने मुआयदा नहीं किया, नंबर तीन मुआयदा करने वालों में से जो शहीद हो गए, है ना, जिसने अपनी नाहब को पूरा कर दिया, और नंबर चार जो भी मुंतजिर हैं, वमा बदलू तब्दीला, और फिर लगे हुए हैं और कोशिश में हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारी कुर्बानियां जो हैं हमें उनको कबूल करे, और उनको शहादत की सादत की आरजू है, और इसी शौक में जिहाद में शिरकत करते हैं कि कब हमें जो है वो शहादत जो है वो नसीब होगी। तो उन्होंने अपने इस मुआहदे में या नजर में कोई तब्दीली नहीं की। मैं यज़ी अल्लाहु सादिकीना बिसिदक़िहिम, अल्लाह ताला कहते हैं ले, यहाँ पे लाम जो है लामे इल्लत है, इल्लत के मानी क्या होते हैं, हैं कि उसका मकसद क्या है। ये जो सब कुछ हुआ ना, ये जो वाकया था अहज़ाब का, जो वाकया पेश आया, ये सब कुछ क्यों हुआ, लियज़ी अल्लाहु सादिकीना, ताकि अल्लाह जजा दे। जजा क्या होती है, उजरत होती है ना, मजदूरी होती है ना, मजदूर मजदूरी करता है तो उसको उसकी उजरत तनख्वाह दी जाती है। लियज़ी अल्लाहु सादिकीना, ताकि अल्लाह बदला दे सादिकीन को, किस चीज का बदला, बेसिदक़िहिम, उनके सिद्क का। तो अल्लाह ताला सादिकीन को उनके सिद्क का बदला दे, वयुअज़्ज़िब अल-मुनाफ़िक़ीना, और मुनाफिकीन जो है वो उनको अजाब दे, मुनाफिकीन को सजा दे। किस चीज की सजा देनी है, उनके निफाक की, उनके मरज की, जो हसद और कीना और कदूरत का जो उनके अंदर मरज था, या उनके वो जो बहाने तराशते रहे, वो जो दीन को नुकसान पहुंचाते रहे। इंशा ओ यतूब अलैहिम, तो क्या करे कि मुनाफिकीन को अजाब दे, इंशा अगर वो चाहे, ओ यतूब अलैहिम, और चाहे तो उनकी तरफ जो है मुतवज्जो हो जाए, चाहे तो उनकी तौबा को कबूल कर ले। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। तो आप देख लीजिए कि इससे जो है हमें क्या बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये बात बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ, जो ग़ज़वा अहज़ाब का पूरा वाकया, इसलिए हुआ ताकि अल्लाह ताला सबसे पहले क्या करना चाहते थे, खरे और खोटे की परख। सादिकीन से मुराद ईमान लाने वाले लोग हैं, जिनका ईमान जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो सिद्दीकियत के मकाम तक उनको ले गया। क्योंकि ईमान जो है ना वो बढ़ता है या फिर घटता है, जब घटता है तो इंसान निफाक के दर्जे पे चला जाता है। जब किसी का ईमान जो है वो बढ़ता है, और बढ़ता कैसे है, जब उसके अंदर दो चीजें होती हैं, ईमान के बढ़ने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, खुलूस और अतात। जितना ज्यादा खुलूस होता है और जितनी ज्यादा अतात मुकम्मल होती चली जाती है, तो दीने हक की सरबुलंदी में उसकी लगन और धुन बढ़ती चली जाती है, ईमान उसी निस्बत से बढ़ता चला जाता है। यहां तक कि इंसान जो है सिर्फ मोमिन नहीं रहता, सिर्फ मुस्लिम नहीं रहता, सिद्दीक बन जाता है, सिद्दीक। तो ये जो है ना, मोमिन, मुस्लिम, सिद्दीक, शहीद, है ना, ये क्या है, ये मुख्तलिफ दर्जात हैं, ये मुख्तलिफ दर्जात हैं, ये ईमान के ही मुख्तलिफ दर्जात हैं। इनका हिसाब मैं और आप नहीं लगा सकते, अल्लाह ही जो है ना इसका हिसाब लगा सकता है, और अल्लाह ही इसकी जो है वो जजा दे सकता है ना। हमारे लिए दुनिया में तो इतना ही है ना कि ज़ाहिरी तौर पर एक इकरार है, एक तस्दीक है और हम इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद मैं और आप ये नहीं कह सकते, फैसला नहीं कर सकते कि वो आधा मुसलमान है या पौ है या दुगना है या तीन गुना है। यानी कानूनी हुकूक तो सबके बराबर है, कानून के लिहाज से अगर देखें। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि वो ज्यादा मोमिन है इसलिए उसके हुकूक ज्यादा हैं और वो कम मोमिन है तो उसके हुकूक कम हैं, है ना। इस एतबार से ईमान की कमी बेशी का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर कहा कि अल ईमानु ला यजीदु वला यनकुस, ईमान कमोबेश नहीं होता कानूनी लिहाज से, वो तो सबका एक जैसा होता है। फिर आगे अमल के जो दर्जे हैं और अमल के जो मुख्तलिफ मरातिब हैं और उनमें जो तफावुत है, ये जो है फिर इंसान के होता तो अमल और रवैये के मुताबिक है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है। मसलन एक इमाम के पीछे नमाजी सब नमाज पढ़ते हैं, एक इमाम है, एक तकबीर है और एक ही जो है वो रफा यदैन है, एक ही जो है वो आमीन बिल जहर है ना, एक तरह ही रुकू और सुजूद है, एक ही दफा सब सलाम फेरते हैं, लेकिन नीयत का फर्क जो है, खुशू खुजू और अमल का फर्क जितने मुक्तदी हैं उनके दर्जों में एक फर्क का तायुन कर देता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं ताकि अल्लाह ताला जो है वो सादिकीन को उनके सिद्क का जो है वो बदला दे, उसकी जजा दे। तो जिसके अंदर जितना सिद्क था उतनी उसको जजा मिलेगी और मुनाफिकीन को अजाब दे, सजा दे। अब आप देखें कि एक तरफ कहा जा रहा है कि मुनाफिकीन को जो है वो सजा दी जाए, लेकिन सजा देने के साथ ही कहा क्या जा रहा है, अगर वो चाहे तो वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीना। अगर आप इतना ही पढ़ें कि वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीना तो मुनाफिकीन को सजा दी जाए, लेकिन अगर आप आगे चले इंशा अगर वो चाहे, और अल्लाह कब चाहेगा, अगर वो मुनाफिक मुसलमान हो जाएंगे। अगर मुनाफिक मुसलमान हो जाएंगे तो अल्लाह क्या चाहेगा, और यतूबा अलैहिम, तो फिर उनको माफ कर देगा, उनकी तरफ मुतवज्जो होगा। और अगर वो माफी नहीं मांगेंगे, अगर वो तौबा नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनको सजा देगा, है ना। तो जो खुद हदायत चाहता है अल्लाह उसको हदायत दे देता है, और जो खुद जो है गुमराही का रास्ता चाहता है फिर अल्लाह उसको भटकने के लिए जो है वो छोड़ देता है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और माफ करने वाला है। वरदल्लाहु अल्लज़ीना कफरू, और अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया, फेर दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया था। कैसे अल्लाह ने फेरा, बेग़ैज़हिम, इनके गुस्से की वजह से। यानी अब यहां पे क्या है कि अल्लाह ने फेर दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया था, बेग़ैज़हिम, इनके गैज के साथ ही। बा यहां पे किस लिए है, मैयत का है, कि उनके गैज के साथ ही, वो अपने गैज और गजब को लिए लिए जो है ना वो मदीना से तकरीबन एक महीने का महासरा करके, तकलीफें और मुशक्कतें उठाकर वहां से जो है वो वापस चले गए। और उनका गैज और गजब क्या था कि उन्होंने बैतुल्ला की दीवारों से सीने लगाकर अल्लाह के सामने ये अहद किया था। और कहते हैं कि ये कितने लोग थे, 20 जमा 50। 20 जो थे वो तो थे यहूदियों के सरदार और साथी, और 50 थे कुरैशी सरदार। और इन्होंने ये अहद किया था कि हम में से जब तक एक आदमी भी जिंदा रहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करते रहेंगे। और रसूलुल्लाह के खिलाफ क्या है, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। अब बैतुल्लाह से चिमट कर अल्लाह के दुश्मन जो है रसूलुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ने का मुआयदा कर रहे हैं, और आप देख लें कि एंड क्या निकला है, किसे का एंड क्या निकला है, वरदल्लाहु अल्लज़ीन कफरू बिगैज़हिम लम यनालू खैरा। अल्लाह ने रद्द कर दिया। अब यहां पे अल्लाह आया है, ये नहीं कहा कि मुसलमानों ने रद्द कर दिया। असल में रसूल अल्लाह ने और सहाबा ने जो कुछ भी किया दरअसल अल्लाह ही की तौफीक से किया, तो निस्बत अमलों को अल्लाह ही की तरफ है। तो अल्लाह ने रद्द कर दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया था। किस चीज के साथ रद्द किया, बेग़ैज़हिम, इनके दिल की जलन के साथ, गैज़ गुस्सा, लम यनालू खैरा, और जो है उन्हें कुछ भी फायदा ना हुआ। आपको पता ही है यनालू जो है नून या लाम से नैल, नैल के मानी क्या होते हैं, पाना, हासिल करना, है ना, पहुंचना किसी चीज तक, अपनी मुराद जो है उस तक पहुंचना, तो वो लोग अपनी मुराद जो थी, वो जो उनकी नीयत थी, वो जो उनका इरादा था, तो ये लोग जो हैं बेनीलो मराम अपने दिलों की जलन दिलों में लिए हुए जो है वो वापस लौट गए। मसलन मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, इत्तहादियों का लश्कर जो था बड़ी जिल्लत और नाकामी के साथ और गुस्से के साथ जो है वो मैदान छोड़कर वापसी पर मजबूर हुआ और मुसलमानों के लिए बहुत सा अपना सामान छोड़ गया। इसी जंग में मैंने आपको बताया था ना कि अमर बिन अब्दे बुद्ध एक बहुत बड़ा सिपा सलार था काफरों का, वो आया और इसके बारे में मशहूर था कि 1000 सवारों पर ये भारी है, शाह सवार था। आप देखें कुछ लोग होते हैं जो पैदल लड़ाई करते हैं, कुछ घोड़ों पे चढ़ के, इसकी खास ट्रेनिंग दी जाती है। आज के इस दौर में भी जो है कुछ लोगों को खास तौर पे ना घोड़ों पर सवार करके ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? बाज जगह ऐसी होती हैं जैसे पहाड़ी इलाके या तंग तारीक इलाके जहां पे जो है ना ये जो टैंक या तोपे चीजें काम नहीं आती, तो वहां पे जो है घुड़सवार घोड़ों पर सवार होके जाके जो है ना वो जंग करते हैं। आज भी आप देखें बाज जगह कहीं भी खतरा महसूस होता है तो आप देखेंगी कि कुछ फौजी जो है ना घोड़ों पर भी होते हैं उस वक्त। अच्छा अब आप देखें कि ये जो था ना अमर बिन अब्दे बुद्ध, ये क्या था, 1000 सवारों पर भारी समझा जाता था। इसने मुसलमानों को जब जंग की दावत दी तो कौन इसके मुकाबले पर आए थे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, और इसको जो था वो कत्ल कर दिया। अब मुशरिकों ने क्या दरखास्त की, मुशरिकों ने कहा कि हमसे 10,000 दिरहम ले लें, 10,000 दिरहम लेकर इसकी लाश हमें दे दें, क्योंकि इनका बड़ा अजीम लीडर था, जर्नैल था, अजीम जंगजू था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाश तुम मुफ्त ही ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत नहीं खाया करते। अब देखें तो सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खूबसूरत किरदार है, कहा कि तुम लाश को मुफ्त ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत नहीं खाया करते। अब जो है अब्दे बुद्ध की लाश उनको मिली, एक ऐसे सिपा सलार को और ऐसे जंगजू को लाए हैं जो 1000 सवारों पर भारी है। आप सोचें कि कितना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ होगा कि उसकी लाश लेकर जा रहे हैं, कि जिसकी लाश के लिए वो 10,000 दिरहम देने को तैयार है, तो फिर यानी उसकी जिंदगी की उनके नजदीक कितनी कीमत होगी, है ना, कितनी कीमत होगी। तो ये है वरदल्लाहु अल्लज़ीन कफरू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा, तो अल्लाह ताला ने उनको जो है ऐसे ही जो है वो लौटा दिया। अच्छा आप देखें कि खैर उनको कुछ भी ना मिली, इस खैर से क्या मुराद है, इसका मतलब है कि उनको दुनिया का मालो मता कुछ ना मिला, कुछ माल गनीमत कुछ उनके हाथ ना आया, ना मदीना पे उनकी फतह हुई, ना जमीना मदीना की जमीन उनके मतहत हुई, तो दुनिया में भी कुछ ना मिला, और रही आखरत तो वहां पे भी अजर व सवाब जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा, उसके वो मुस्तहिक नहीं होंगे, किसी किस्म की भी खैर उन्हें हासिल ना हुई, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। वकफ़ अल्लाहु المؤمنین القتال, और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। इसका मतलब क्या है कि मोमिनों को बकायदा लड़ाई की जो है वो जरूरत ही पेश नहीं आई, अल्लाह ताला ने हवा और फरिश्तों के जरिए अपने मोमिन बंदों की मदद का सामान जो था वो बाहम पहुंचाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू सदका वादहू व नसरा अब्दहू व अज्ज जुंदहू व हजमल अहजाब वहदहू फला शैअ बादा, ये सही बुखारी की रवायत है। इसका तर्जुमा क्या है कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की, अपने लश्कर को सुरखरू किया और तमाम गुरोहों को अकेले इसने ही शिकस्त दे दी, इसके बाद कोई शय नहीं। ये आपको याद है, ये दुआ कब पढ़ी जाती है, आप में से किस किस ने हज और उमरा किया है, माशाल्लाह अक्सर ने किया है और आपने उस वक्त ये दुआ पढ़ी होगी। ये दुआ हज उमरा जिहाद और सफर से वापसी पर भी पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि हज और उमरे में आप मक्का जाते हैं और मक्का फतह हुआ, कहां रसूलुल्लाह वहां से निकले थे, कैसे फिर वहां पे पहुंचे, तो अल्लाह ही ने ये सारा काम जो है वो किया है। तो ये है बात वकफल मुमिनीन अल-क़िताल, कि अल्लाह जो है वो मुमिनीन के लिए जो है वो काफी हो गया। अल्लाह ताला ने जो है वो क्या किया, کہ یہودیوں کے اندر بھی پھوٹ ڈال دی, ہے نا, یہودیوں کے اندر پھوٹ ڈال دی. حالانکہ حال کیا تھا کہ بنو قریدہ بھی جو تھا نا بدعہدی پر آمادہ ہو گیا تھا, لیکن جو ہے وہ پھوٹ پڑ گئی ان میں. حضرت نعیم جو تھے, حضرت نعیم جو تھے, ان کی جو حکمت تھی اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوا مسلمانوں کو. تو حضرت نعیم نے جو اسلام قبول کیا اور اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تدبیر جو آپ نے چلی, تو یہ کیا ہے کہ اللہ ہی نے کیا. وقف اللہ المؤمنین القتال, اللہ ہی مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. قتال کے مراد کیا ہے؟ لڑنا, لڑائی, قتال. اللہ ہی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو گیا. مثلا آپ دیکھیں کہ ہئی کہنے لگا, ہئی جو ہے, ہئی بن اختب نے جو ہے وہ کہا, کس کو کہا؟ کعب کو کہا کہ میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں. ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں کا صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے. اس کے جواب میں جو کچھ کعب نے کہا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا تھا, ہئی واللہ تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا و بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے. تم پر افسوس, تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق و صفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو شروع میں تو نہیں مانا تھا نا قریدہ کا جو لیڈر تھا, شروع میں تو ایسی ہی باتیں اس نے کی تھی نا, لیکن ہئی نے کعب کو سبز باغ دکھا کر بدعہدی پر مجبور کیا تھا. اور وہ کہنے لگا, اگر قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیے بغیر ہی واپس چلے گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ قلعہ بند ہو جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا. پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا. اب اس شرط پر کعب بھی جو ہے وہ کیا ہوا کہ اتحادیوں میں جو ہے وہ شامل ہوا تھا. اس طرح اس کو مجبور کیا تھا نا, لیکن پھر ہوا کیا؟ یہ پھر کچھ بھی نہ ہوا. فکان اللہ قوی عزیزا, اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. تو عزیزہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عزیزہ کے کیا معنی ہیں, اس کے دو معنی ہیں, ہے نا. ایک معنی جو ہے اس کے معنی, ایک معنی تو ہے کہ جیسے یہ لفظ جو ہے وہ عزت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ اصل میں جو عزت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور دوسرے اس کے معنی ہیں وہ کیا ہیں, کہ یہ لفظ جو ہے یہ غلبے کے لیے, قوت کے لیے, اقتدار کے لیے بھی جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اصل جو اقتدار ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے, کیونکہ عزت بھی اللہ کی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جتنا بھی اقتدار ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو عزیزن کا لفظ جب آئے گا تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جو بھی وہ فیصلے کرتی ہے نا, فیصلے کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو نافذ کرنے کی جو ہے اس پر غلبہ پانے کی اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے. اور دوسرے اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ کے فیصلوں ہی میں اصل میں عزت ہے اور رہنمائی ہے. اور قوی کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ قوی کا لفظ جو ہے یہ صفت مشبہ ہے, اور یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے. شد بھی آئی ہوئی ہے, تو اللہ بڑی طاقت والا ہے.